आशृण्वतो मामनुरागहासः समीक्षया विश्रमयन्नुवाचः तस्यानुरक्तश्च मुनिर्मुकुन्दः प्रमोदभावान् ततन्दरशः आशृण्वतो मामनुरागहासः समीक्षया विश्रमयन्नुवाचः तस्यानुरक्तश्च मुनिर्मुकुन्दः प्रमोदभावान् ततन्दरशः आशृण्वतो मामनुरागः समीक्षया माताजी तस्यानुरक्तश्च मुनिर्मुकुन्दः प्रमोदभावान् ततन्दरशः आशृण्वतो मामनुरागः सः शब्दात् तस्य पुस्तकम् अनुरक्तश्च अनुरक्तः मुने मुनिका मुकुन्द मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान प्रमोद भावः प्रसन्न मुद्रा में आनतः नीचे किए कंदरश कंधों का आशुमतः इस तरह सुनते हुए मां मुझको अनुरागः सह दयालु हंसी से समीक्षया मुझे विशेष रूप से देखकर विश्रमयान मुझे विश्राम पूरा करने देकर उवाचा कहा अनुवाद और तात्पर्य इंग्लिश एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद के अनुवाद इस प्रकार से है मैत्रेय मुनि उनमें भगवान में अत्यधिक अनुरक्त थे और वे अपना कंधा नीचे किए प्रसन्न मुद्रा में सुन रहे थे मुझे विश्राम करने का समय देकर भगवान मुस्कुराते हुए तथा विशेष चितवन से मुझसे इस प्रकार बोले तात्पर्य यद्यपि उद्धव तथा मैत्रेय दोनों ही महात्मा थे किंतु भगवान का ध्यान उद्धव पर अधिक था क्योंकि वे निष्कलंक शुद्ध भक्त थे ज्ञान भक्त अर्थात वो जिसकी भक्ति एकात्ववाद के दृष्टिकोण से मिश्रित होती है शुद्ध भक्त नहीं होता यदि मैत्रेय भक्त थे किंतु उनकी भक्ति मिश्रित थी भगवान दिव्य प्रेम के आधार पर अपने भक्तों से प्रतिदान करते हैं ज्ञान या सकाम कर्मों के आधार पर नहीं भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में एकत्ववाद ज्ञान अथवा सकाम कर्मों के लिए कोई स्थान नहीं होता वृंदावन की गोपियां न तो परम विद्वान थी न योगी थी उनमें भगवान के लिए रागानुग प्रेम था अतः वे उनके प्राणाधार बन गए और गोपियां भी उनके प्राणाधार हो गए श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान के साथ गोपियों के संबंध को सर्वोत्कृष्ट माना है यहाँ पर उद्धव के प्रति भगवान का दृष्टिकोण मैत्रेय मुनि की अपेक्षा अधिक घनिष्ठ था ओम अज्ञान अतिमिरांधश्च ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछाकल्पतरूपेश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव वासुदेव गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे।
मैत्रेय मुनि भगवान में अत्यधिक अनुरक्त थे और अपना कंधा नीचे किए प्रसन्न मुद्रा में सुन रहे थे। मुझे विश्राम करने का समय देकर भगवान मुस्कुराते हुए तथा विशेष चितवन से बसे इस प्रकार बोले, हरे कृष्णा। तो ये विशेष वार्तालाप है श्रीमद् भागवतम की, वास्तव में शुरुआत हो रही है। तो ये जो वर्णन है ये उद्धव विदुर को कर रहे हैं। उद्धव वो सारी घटनाएं बता रहे हैं जो उन्होंने अपने आंखों से देखी थी, जिसे कहा जा सकता है आंखों देखा हाल। किस प्रकार से उन्होंने यदुवंशों का विनाश उन्होंने अपने आंखों के सामने देखा, और वो विनाश होने के पूर्व भगवान कृष्ण ने उद्धव को बुलाकर कहा था कि ये मेरी इच्छा है, अपनी इच्छा से इस बलवान यदुवंश का मैं विनाश करना चाहता हूं। तो उद्धव कह रहे थे कि भगवान ने सारे यदुओं का विनाश किया, फिर अकेले चलने लगे सरस्वती नदी के तट पर, एक वृक्ष का आश्रय लेकर वहां बैठे आराम की मुद्रा में, अपना एक पांव दूसरे पांव के ऊपर डालकर ऐसे लेटे हुए थे। मैं भी अपने स्वामी, क्योंकि वो इस जगत से चले जाने वाले थे और वो मेरे दृष्टि से ओझल हो जाएंगे, तो मेरे लिए वो असहनीय था उनके बिना निवास करना। तो मेरे हृदय में बहुत अधिक गहरा प्रेम उनके लिए था, और उस विरह को या उस वियोग को मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं भी उनके पीछे चलने लगा। चलकर कृष्ण वहां रुके थे, तो मैं उनके नजदीक जाकर बैठता हूं। तो भगवान की इच्छा से, और दूसरा मैत्रेय मुनि की भी डिजायर है, वो स्वतंत्र है। इस बात को उद्धव बोलते हुए उन्होंने कहा कि कृष्ण द्वापायन व्यास के मित्र और उनके परम वेलविशर हितेशी, मैत्रेय मुनि का आगमन वहां होता है अचानक, जो पराशर मुनि के शिष्य थे जिन्होंने सर्वप्रथम पुराण लिखा विष्णु पुराण, बाकी पुराण तो बाद में व्यासदेव ने लिखे। तो ऐसे मैत्रेय मुनि का वहां आगमन हुआ, तो उद्धव बता रहे हैं कि वहां क्या हो रहा था। भगवान इस जगत को छोड़ के जाने से पूर्व भगवान कुछ बोल रहे थे और उनके वाणी को मैत्रेय मुनि बड़े गंभीरता से सुन रहे थे, झुककर अपना कंधा नीचे किए होकर। लेकिन उद्धव कहते हैं ऐसे मैत्रेय मुनि के दो गुणों का वो वर्णन करते हैं। डिवोटीज दूसरों का गुणगान करने में सदैव उत्साहित रहते हैं। उद्धव कहते हैं कि मैत्रेय मुनि तस्यानुरक्तस्य मुनेर मुकुंद, जो मुकुंद है मुनि किसमें अनुरक्त थे, कृष्ण में अनुरक्त थे, उनकी आसक्ति अनुराग वो कृष्ण में था। और वो सुन भी रहे थे तो क्या भाव से सुन रहे थे, प्रमोद भावा आश्रमोतो, कहते प्रमोद भाव मतलब आनंदित होकर श्रवण कर रहे थे कृष्ण के वाणी को। तो जो भी कृष्ण कथा है उसको हमें आनंदित होकर भगवान के बारे में सुनने में सदा ही उत्साहित रहना चाहिए। इस भौतिक जगत में हमेशा कठिनाइयां हैं, लेकिन जब भी कृष्ण कथा को सुनने का हमें मौका मिलता है तो हमें सोचना चाहिए कि इस संसार में सर्वाधिक भाग्यशाली कौन हूं, मैं हूं। चैतन्य महाप्रभु उस व्यक्ति को बहुत बड़ा मानते हैं जिस व्यक्ति के अंदर कृष्ण के बारे में सुनने के लिए तीव्र अनुराग है, या जिसके अंदर इच्छा हो गई, ये इच्छा आ जानी चाहिए कि अरे मुझे कृष्ण के बारे में सुनना है। वो जो प्रद्युम्न मिश्रा थे जगन्नाथपुरी में, वो एक दिन चैतन्य महाप्रभु के पास आते और कहते हे चैतन्य देव, आज मुझे क्या हो गया है, मैं ना कृष्ण के बारे में सुनना चाहता हूं। ऐसे जो बोला तो महाप्रभु का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा अहो भाग्यम, क्या भाग्यशाली हो तुम। इस संसार में भौतिक इच्छाएं हमारे हृदय में बहुत आती रहती हैं, लेकिन कभी ये इच्छा नहीं आती है कि कृष्ण के बारे में सुनना है। महाप्रभु ने कहा, मेरे भी हृदय में कृष्ण के बारे में सुनने में इतना अनुराग या इच्छा नहीं है, लेकिन तुम सुनना ही चाहते हो। उन्होंने कहा, मैं आपके द्वारा सुनना चाहता हूं। महाप्रभु कहते, नहीं, मैं तो कृष्ण कथा नहीं जानी, आमी कृष्ण कथा नहीं जानी, मैं कृष्ण कथा को नहीं जानता हूं। इस संसार में हमें कृष्ण कथा करने का जो सामर्थ्य और कृष्ण कथा में आसक्त भक्त कोई है, तो वो रामानंद राय हैं, उनके पास जाकर सुनो। प्रद्युम्न मिश्र के पास जाकर कृष्ण कथा को सुनते हैं। तो यहाँ मैत्रेय मुनि भी बहुत आनंदित होकर, उल्लासित होकर कृष्ण के वाणी को सुन रहे हैं। तो कृष्ण के वाणी को डायरेक्ट सुनना या उनके भक्तों के द्वारा सुनना, वो एक ही है। प्रभुपाद ने कहा, जो लाभ अर्जुन ने प्राप्त किया था डायरेक्ट भगवद गीता सुनकर, वही लाभ हम प्राप्त करते हैं परंपरा में आए हुए कृष्ण अनुरागी, कृष्ण प्रेमी भक्तों के मुख से जब कृष्ण का वर्णन सुनते हैं। तो ये गुणगान मैत्रेय मुनि का उद्धव कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि जनरली क्या होता है, जब हम समवयस्क होते हैं, एक साथ होते हैं, हाँ, तो जनरली हमें ईर्ष्या होती है, और ईर्ष्या का लक्षण क्या है, हम प्रशंसा नहीं करते, दूसरों के गुणों को नहीं देखते। तो ईर्ष्या का जो प्रतिनिधित्व करता है वो सांप है, इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, मेरा जन्म एक कुएं में हुआ था, जिस कुएं में सारे सांप थे। अपने आसुरी फैमिली का वर्णन किससे करते हैं, सांपों से करते हैं, ईर्ष्या तो रहता है सदैव। तो वैसे ही उद्धव के अंदर एक गुण था, उद्धव को ईर्ष्या नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी एक चीज उद्धव कहते हैं, समीक्षया अनुराग हासम, वो कहते हैं मेरे तरफ देखा लेकिन भगवान ने, लेकिन कैसे देखा, वो कहते समीक्षया विशेष रूप से कृष्ण मेरी ओर बारंबार देख रहे थे, और मुझे देखकर अनुराग हासम, अनुराग हासम मतलब स्मित, हर्ष वो कर रहे थे, और उससे पता चल रहा था कि कृष्ण का अधिक जो अनुराग है, प्रीति है, वो किससे है, उद्धव से है। इसी चीज को प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि मैत्रेय मुनि और उद्धव में यही अंतर था, मैत्रेय मुनि मिश्र भक्त थे और उद्धव कैसे थे, शुद्ध रागानुग भक्त थे, इसलिए उन्होंने ब्रज में वास किया था। पूरे तात्पर्य में प्रभुपाद ने इसी बात पर जोर दिया है, इसी चीज को एस्टेब्लिश किया या स्थापित किया है कि कृष्ण को अपनी ओर आकृष्ट करना है या कृष्ण को प्राप्त करने की अभिलाषा है तो व्यक्ति को शुद्ध भक्ति करने की इच्छा जागृत करनी चाहिए, और शुद्ध भक्ति के बिना कृष्ण प्राप्ति असंभव है। और शुद्ध भक्ति किन चीजों से रहित है, ज्ञान और कर्म से रहित है, और कृष्ण तो केवल रागानुग प्रेम के द्वारा आकृष्ट होते हैं। इसी कारण से प्रभुपाद इस तात्पर्य में लिखते हैं, भगवत भक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कोई है तो वृंदावन की गोपिकाएं हैं। वृंदावन की गोपियों को चैतन्य महाप्रभु ने सर्वोत्कृष्ट माना, तो हमें वास्तव में कृष्ण का भक्त बनना है तो इसका मतलब अल्टीमेट गोल क्या है कि हमें ब्रजवासी बनना है। कौन सा वासी, ब्रजवासी। हम ब्रजवासी बने बिना कृष्ण प्राप्ति असंभव है, तो कैसे, कोई कहेगा कैसे ब्रजवासी बने, हम तो यहां से, हम तो अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहते। तो ब्रजवासी तीन प्रकार के हैं। एक ब्रजवासी वो है जिसने ब्रज में जन्म लिया है और कृष्ण के प्रति स्वाभाविक रूप से उसका आकर्षण है, ब्रज में रहकर भक्ति साधना करने की उसको आवश्यकता नहीं है, जन्म लेते हुए उसका प्रेम किससे है, कृष्ण से है। जैसे बच्चा जन्म लेता है स्वाभाविक प्रेम माँ से रखता है, किसी और स्त्री को अपनी मां नहीं कहेगा, उससे उसका स्वाभाविक आकर्षण नहीं होगा। तो दूसरा ब्रजवासी वो है जिसने दूर जन्म लिया है लेकिन वो आकर ब्रज में निवास करता है, ब्रजवासियों के चरण चिन्हों पर चलते हुए वो वास्तव में एक ब्रजवासी है। और तीसरा ब्रजवासी कौन है कि जो जिसने चाहे ब्रज में जन्म ना लिया हो और जो ब्रज में जाकर निवास ना करता हो लेकिन अपने स्थान में रहकर ब्रज की भावना का जिसने अपने हृदय में विकास किया है वो ब्रजवासी है। तो प्रभुपाद ऐसे ब्रजवासी हैं, हाँ, जिन्होंने ब्रज में जन्म नहीं लिया एक प्रकार से, लेकिन चाहे वो अपने छोटी आयु से लेकर वृद्धावस्था तक एक ही मूड में थे, ब्रजवासियों की भाव, ब्रजवासियों का भावना। और ऐसे ब्रजवासी ही अपने हृदय में ब्रज को और कृष्ण को कैरी कर सकते हैं और जहां जा जाए उस स्थान को ब्रज में परिवर्तित कर सकते हैं। ब्रजवासी का ये गुण है, ब्रजवासी के अंदर एक क्वालिटी या सामर्थ्य या स्ट्रेंथ है कि वो जहां भी जाता है ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण को अपने हृदय में धारण करता है, वृंदावन धाम को अपने हृदय में रखता है और जहां जहां उसके चरण पड़ते जहां जहां वो निवास करता है उस स्थान को वो वृंदावन में परिवर्तित करता है। तो इसलिए ब्रजवासियों का स्वभाव क्या है, चैतन्य चरितमृत में वर्णन आता है, जब गोपाल का प्राकट्य हुआ था गोवर्धन के ऊपर माधवेंद्रपुरी के लिए तो कृष्णदास कविराज कहते हैं, ब्रजवासी लोकेर कृष्ण सहज प्रीति गोपालेर सहज प्रीति ब्रजवासी प्रति, कहते कि यही तो खासियत है वृंदावन के निवासियों की। क्या खासियत है, ब्रजवासी लोकेर कृष्ण सहज प्रीति, यहां तो हमें प्रेम करना सीखना होता है, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे तभी हम प्रेम विकसित कर पाएंगे, लेकिन वहां ब्रजवासियों को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ब्रजवासी तो कृष्ण को अपने फैमिली का एक सदस्य के रूप में ट्रीट करते हैं। आज भी वृंदावन के निवासी कहते हैं, ये कौन है, हमारा लाला है, और श्रीमती राधिका कौन है हमारी, वो तो ब्रज की लाली है। तो ऐसा स्वाभाविक प्रेम की वाणी कौन बोल सकता है जिसके अंदर क्या हो, प्रेम की भावना हो। हम तो भगवान मतलब दोनों हाथ जोड़ के दंडवत प्रणाम करने के लिए तैयार, लेकिन कृष्ण कहते हैं उससे इससे आनंद नहीं आता, जब मेरे सखा मेरे कंधे पर चढ़ते हैं तब मुझे आनंद आता है, प्रेम से वात्सल्य भावना से मेरी माता मुझे थप्पड़ मारती है, उखल से बांध के रखती है और डांटती है तब मैं आनंदित होता हूं। और जो मेरी मुझसे प्रीति रखने वाली गोपिकाएं हैं वो मुझे जब वचन बोलती है कठोर हृदय को तोड़ने वाले तो मुझे आनंद आता है, उतना आनंद मुझे नहीं आता जितना ये सारे लोग प्रार्थनाएं स्तुति या अष्टकम स्तोत्रम गाते रहते हैं। क्यों, क्योंकि उनमें स्वाभाविक प्रीति है और वास्तव में चैतन्य महाप्रभु यही प्रीति की भावना सारे जीवों को देना चाहते थे। इसलिए कृष्णदास कविराज ने कहा अचिरा कि बहुत लंबा समय हुआ वो प्रेम दिया नहीं भगवान कृष्ण ने, वही देने के लिए वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो ब्रजवासियों का प्रेम कृष्ण के लिए नेचुरल है, नेचुरल अफेक्शन है। हाँ, जैसे और कृष्ण का प्रेम भी गोपाल सहज प्रति ब्रजवासी प्रति, गोपाल का प्रेम भी कृष्ण के लिए या ब्रजवासियों के लिए क्या है, स्वाभाविक है। इसलिए कृष्ण ने कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम्यहम्, आप जैसे मुझसे प्रेम करोगे वैसे मैं आपसे क्या करूंगा, प्रेम करूंगा, आदान प्रदान रखूंगा। लेकिन कृष्ण कहते हैं ये श्लोक गोपियों को, गीता के श्लोक एक ही डिवोटीज है जिनके ऊपर काम नहीं करते, किन कौन कौन से डिवोटीज है, गोपिकाज है, गोपिकाएं इन सब श्लोकों से परे है, कृष्ण कहते सर्व धर्मान परित्यज्य, उन्होंने सारे धर्म आदि तो पहले ही छोड़ दिए हैं। कृष्ण कहते आपका इतना प्रेम है कि उतना मैं आपको दे नहीं पा रहा हूं, जितना आप, मैंने बोला है कि जितनी शरण लोगे मैं भी उतनी लूंगा। यदि इतना अत्यधिक प्रेम और सेवा की भावना है कि मैं उसको बाद में रिपे नहीं कर रहा हूं, इसलिए कृष्ण कहते इस संसार में मैं किसी का ऋणी नहीं हूं। लेकिन ऋणी हो तो केवल वृंदावन की जो गोपिकाएं हैं उनका ही मैं केवल ऋणी हूं। इसलिए वृंदावन वासियों का प्रेम स्वाभाविक कृष्ण के लिए है, उसी प्रकार से 100% प्रेम कृष्ण का भी स्वाभाविक रूप से किसके लिए है? वृंदावन वासियों के लिए है, क्योंकि ये नेचुरल है। आसक्ति का एक लक्षण है, अटैचमेंट, अनुराग का एक लक्षण है। ब्रजवासी कृष्ण से अनुराग रखते थे, कृष्ण ब्रजवासियों से अनुराग रखते थे। तो क्या लक्षण है आसक्ति का? कि हमारा मन, हमारा हृदय और हमारे विचार नेचुरली उस व्यक्ति की ओर क्या होते हैं? फ्लो करते हैं। तो कृष्ण का अनुराग वृंदावन वासियों के प्रति है, तो स्वाभाविक रूप से कृष्ण के विचार, कृष्ण का हृदय और कृष्ण का मन कहां भागता है? वृंदावन के भक्तों के प्रति, चाहे वो मथुरा में निवास कर रहे हैं मथुरेश कृष्ण के रूप में, या द्वारका में निवास करते हैं द्वारकाधीश या द्वारकेश के रूप में, लेकिन उनका मन, हृदय और विचार कहां भागते हैं? हाँ, तो ये तीनों चीजें जहां भागेगी फिर शरीर नहीं रहेगा उस स्थान में, कालांतर में क्या भागने लगेगा? शरीर भी। इसी कारण से जगन्नाथ जी रथ में क्यों जाते हैं बाहर, मंदिर छोड़ के क्यों भागते हैं? क्योंकि उनका मन चुरा लिया गया था, उनका हृदय चुरा लिया गया था, और उनके विचारों में कौन थे सर्वाधिक? वृंदावन वासी। इसलिए 34 तेज उनका शरीर, दिव्य देह भी द्वारका में निवास नहीं करना चाहता, वो वृंदावन जा रहा है। रथ के ऊपर बैठकर वो निकलते हैं। जैसे कोई बच्चा है, कई सारी माताएं हैं, लेकिन बच्चा किसको ढूंढ निकालेगा? अपनी माँ को ही माँ कहेगा। जैसे आचार्यगण कहते हैं कई सारी गायें हो, बछड़े को छोड़ दो, लेकिन बछड़ा किसी को ढूंढ लेगा? अपनी माँ को, क्योंकि नेचुरली आसक्त है। तो इसी प्रकार से कृष्णा अपने प्रेमी भक्तों के साथ आसक्त होते हैं। तो भगवान भी अपने भक्तों को देखने के लिए सदैव उत्कंठित रहते हैं। इसी कारण से कृष्णदास कविराज कहते हैं, यद्यपि जगन्नाथ करे द्वारकाय विहार, सहज प्रकट करे परम उदार, तथापि वत्सल मध्य हय एक बार, वृंदावन देखिते तार उत्कंठ अपार। कहते हैं यही कारण है इतने कृष्ण आसक्त हो गए अपने ब्रजवासियों के प्रति, प्रेमी भक्तों के प्रति, कि साल में एक बार, वत्सल मध्य हय एक बार, साल में एक बार क्या करते हैं वो? वृंदावन देखिते तार उत्कंठ अपार, उनके हृदय में वृंदावन को देखने के लिए उत्कंठा बढ़ती है। इसी कारण से वो बार बार उद्धव को देख रहे हैं, क्योंकि भगवान आनंद लेते हैं अपने प्रेमी भक्तों को देखने में। तो कृष्णदास कविराज कहते हैं चैतन्य चरितामृत में कि ये जगन्नाथ देव बहाना बनाते हैं रथ के ऊपर बैठने का, और वृंदावन के समान सुंदर, जो सुंदराचल है पुरी के स्थानों में जहां जहां वो मन है, उनको देखने के लिए इतने उत्कंठित होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा स्वरूप दामोदर से, बताओ स्वरूप, ये रथ के ऊपर बैठकर अपनी प्रिया लक्ष्मी को साथ न लेकर अकेले निकलते हैं? सुभद्रा बलदेव को अलग से रथ में बिठाकर दूसरे, ऐसे नहीं कि आपने साथ रखा है। कृष्ण बहुत क्या है, चतुर है। कृष्ण इतने चतुर है कि सुभद्रा और बलदेव को भी अलग रथ में बिठा दिया, और इनको क्या करना था, किनसे मिलना था? वृंदावन वासियों से, गोपिकाओं से मिलना था। इसलिए अलग रथ चाहिए मुझे, अलग रथ में बैठ के। महाप्रभु कहते क्यों ये अलग रथ में बैठते हैं, और इतना सुंदर शिव मंदिर, इतना विशाल जगन्नाथपुरी का टेम्पल, मीन्स वो द्वारका है, ऐश्वर्य, इतनी सारी रानियां, लक्ष्मियां हैं,
लक्ष्मी उसको छोड़कर क्यों यहाँ निकलते हैं? महाप्रभु भाई साहब करते कहते देखो यहाँ सारे इतने सारे वन उपवन है, गार्डन्स है, इनको देखने में क्यों आते हैं? वो क्यों इतने ईगर है, क्यों इतने उत्कंठित है? महाप्रभु ने कहा वायरहित करे रथ यात्रा चल सुंदरा चले जाए प्रभु छाड़े नीलाचल। क्यों सुंदरा चल जा रहे हैं नीलाचल को छोड़कर? तो और दिन रात पुष्प उद्यानों में रहना भगवान को बहुत अत्यधिक आनंद महसूस होता है। तो महाप्रभु कहते स्वरूप बताओ लक्ष्मी को छोड़कर अकेले इन वनों में वो घूमना चाहते हैं, इसका कारण क्या है? तो स्वरूप दामोदर कहते हैं स्वरूप कहे सुन प्रभु जहार कारण वृंदावन क्रीड़ाते लक्ष्मी नाही अधिकार। वो कहते हैं इसका एक ही कारण है कि वृंदावन में लक्ष्मी का क्या नहीं है, एंट्री नहीं है, लक्ष्मी देवी का प्रवेश नहीं है। वृंदावन लीलाय कृष्णेर सहाय गोपीगण गोपीगण बिना कृष्णेर हरिते नारे मान। तो प्रभुपाल अपने तात्पर्य में यही कह रहे हैं अनन्य भक्ति का जो सर्वोत्कृष्ट उदाहरण वो वृंदावन की गोपियां हैं, और बल्कि लक्ष्मी देवी भी इतनी सेवा करती हैं, लेकिन वो भी ब्रज में वृंदावन में क्या नहीं होती, प्रवेश नहीं कर पाती। उसका भी भक्ति लक्ष्मी का भी भजन अनन्य भजन नहीं है। लक्ष्मी का भी भजन क्या है, उपाधि से ग्रस्त भजन है। चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे तो गोपाल भट्ट के पिता वेंकट भट्ट से कहते देखो गोपाल भट्ट के पिता तो लक्ष्मी नारायण की सेवा करते थे। महाप्रभु कहते कि देखो तुम्हारी ये जो लक्ष्मी ठाकुरानी है वो तो पतिव्रता साध्वी शिरोमणि है और वो सदैव भगवान के छाती वक्ष स्थल में निवास करती है, और हमारे ठाकुर गो गोपचारक, मेरे ठाकुर कौन है, गवे चराने वाले हैं। साध्वी है या केने चाहे तहार संगम, वो इतनी पतिव्रता होकर भी मेरे ठाकुर कृष्ण का संग क्यों चाहती है? हाँ लेकिन क्या होता है, हाँ ये जो लक्ष्मी देवी है वैकुंठ को छोड़कर नारायण को छोड़कर ब्रजवासी बनना चाहती है। क्या बनना चाहती है, ब्रजवासी, और मतलब ब्रजवासी मतलब कृष्ण प्राप्त करना चाहती है। लेकिन कृष्ण प्राप्त करने के लिए क्या बनना पड़ेगा, ब्रजवासी बनना पड़ेगा। लेकिन ये लक्ष्मी एक चीज नहीं छोड़ना चाहती, क्या चीज नहीं छोड़ना चाहती, अपनी उपाधि की मैं लक्ष्मी हूं। बोलिए मैं क्या हूं, हाँ हमारे सबके साथ एक प्रॉब्लम है, मैं ये प्रभु हूं उपाधि। तो अनन्य भक्ति क्या है, उपाधियों से रहे। लक्ष्मी ने देखा गोपिकाओं ने कहा आपको वृंदावन में प्रवेश करना है, रास क्रीड़ा में प्रवेश करना है, कृष्ण का संग की आप इच्छा रखती हो, आकांक्षा रखती हो, तो आपको ये सारे आभूषण त्यागने पड़ेंगे, जिससे बहुत अपने आप को बहुत घमंड भूषण आभूषण त्यागो और क्या करो, सर्वसाधारण गोपियों के भांति गौओं का गोबर उठाओ, कंडे बनाओ, हाँ तो आप ब्रजवासी हो सकती हो। उन्होंने कहा नहीं नहीं ये संभव नहीं है, ये कहा मैं इतने हजारों लोग मेरे पीछे मेरे चरणों की सेवा के लिए भागते हैं, हाँ तो इसी कारण से वो अपने उपाधि को त्यागना नहीं चाहते, अपने पद पोजीशन का उसको घमंड है। ब्रजवासी मतलब सरल हृदय के, जो कृष्ण के अलावा किसी से प्रेम नहीं रखते, बस ये सरल डेफिनेशन है। इवन अपने पुत्र पत्नी सबसे नहीं, सर्वाधिक प्रेम किसके लिए है, तो कृष्ण के लिए है। इसी कारण से वृंदावन में जो बेल वन है वह आज भी लक्ष्मी क्या कर रही है, तपस्या के मुद्रा में है, एंट्री नहीं है उसको कृष्ण की लीलाओं में। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वृंदावन लीलाए कृष्णेर साह्य गोपीगण, वृंदावन की लीलाओं में तो गोपी ही गोपिकाएं कृष्ण की लीलाओं में सहायता करती है। गोपीगण बिना कृष्णेर हरिते नारो मन, तो गोपियों के अलावा कृष्ण का मन कोई चुरा नहीं सकता। तो सर्वोत्कृष्टता को चैतन्य महाप्रभु स्थापित करते हैं और ये बताते हैं कि वास्तव में जो गोपिकाओं का प्रेम है और उनका जो अनन्य भजन है, शुद्ध भक्ति है उनकी, उसकी किसी भी भक्त से तुलना नहीं की जा सकती। हाँ, इवन ये नारद, प्रहलाद, ध्रुव, इतने बड़े बड़े जो भक्त हुए हैं, इनकी तुलना ब्रजवासियों के भक्ति से नहीं की जा सकती। ब्रजवासीगण इन सब के भक्ति से क्या है, सर्वाधिक उन्नत है। तो स्वरूप दामोदर कहते हैं कि हमारे जो कृष्ण है वो रसिक शेखर है और जो रस का आस्वादन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है और जिनका शरीर भी क्या है, इन रसों से परिपूर्ण है। प्रेममय वपु कृष्ण भक्त प्रेमाधे शुद्ध प्रेमे रस गुणे गोपिका प्रवीण। तो कृष्ण कुछ नहीं चाहते, गोपियों से इतने आसक्त क्यों हैं? क्योंकि वहां शुद्ध प्रेम है और हम इस भ्रम में ना रहे। भक्ति का मतलब ये शुद्ध भक्ति। कृष्ण प्राप्ति तभी संभव है जब व्यक्ति किस चीज को चाह करता है, शुद्ध भजन या शुद्ध भक्ति की चाह करता है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, स्वरूप दामोदर कहते हैं, कृष्ण का शरीर प्रेम से बना हुआ है, इसी कारण से कृष्ण प्रेम के अधीन होते हैं। जो भक्त उनसे अत्यधिक प्रेम रखता है उनके कंट्रोल में कृष्ण होते हैं। और ऐसे शुद्ध प्रेम में इस संसार में कोई एक्सपर्ट है, प्रवीण है, तो वो गोपिकाएं हैं। गोपिका प्रेमे नाही रसा भास दोष, अतएव कृष्णेर करे परम संतोष। गोपिकाओं के प्रेम में थोड़ा सा भी दोष नहीं है। यहां जितनी भी रानियां हैं, लक्ष्मी हैं, बाकी जितने भी डिवोटीज हैं, उनमें दोष है उनके भजन में। जब नारद को भगवान ने कहा मेरा क्या हो रहा है, सरदर्द हो रहा है, द्वारका में रहकर सरदर्द ही होगा और दूसरा कुछ होगा ही नहीं। कितने रानियों के साथ रह रहे भगवान, 16,108 सुदर्व सभा है वहां, और क्या है, इतने सारे मंत्रीगण, इतने अफेयर से डील करना पड़ता है, तो हमेशा सरदर्द। और एक बार इतना सरदर्द तेज हो गया तो कृष्ण के डॉक्टर कौन है, नारद। उनको बुलाया, उनको कहा कुछ प्रिस्क्राइब करो मेडिसिन, तो उनको भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि ये सर्द रेगुलर सरदर्द नहीं था। हाँ, ये कभी कभी उठता है जब उनको ब्रज का स्मरण होता है। तो कृष्ण को दवाई भी पता थी, कई बार आप बीमार होते हैं ना, हमें अपनी दवाई पता रहती है प्रॉब्लम की, दूसरों को पता नहीं होती। तो कृष्ण को अपनी समस्या की मेडिसिन पता थी। तो नारद को जब कहा, नारद ने पूछा बताइए क्या दवाई, कहते एक ही है, मेरे जो शुद्ध भक्त है उनके चरण धूली जब उसका लेप लगाया जाए, ऐसे नहीं कि चरण धूलि के कण पड़े, क्या चाहता हूं मैं, चंदन का लेप जैसे लगाते हैं वैसा लेप मेरे भक्त के चरण धूलि का लगना चाहिए, मेरे माथे पर, सर माथे पर। तो नारद कहते हैं, अभी नारद खुद ही डिवोटी है, नारद खुद ही बोलते भगवान अभी तैयार हो मैं दे देता हूं, लेकिन इतना नारद का उन्नत प्रेम नहीं है जितना किनका है, ब्रजवासियों का है। इसलिए तो नारद की जो भक्ति है वो ऐश्वर्य भाव में है। तो नारद उनके रानियों के पास जाते हैं, रानियां कहती है नारद पागल तो नहीं हुए, पति के सर में अपनी धूल लगाना, पाव लगाना, पति को पाव टच करना भी क्या है, ऑफेंस है। सब पति के लिए पूज्य है, पत्नी के लिए क्या है, पूज्य है। और वो मेरे चरणों की धूल, वो भी भगवान, वो तो भगवान है, और पति भी उनके माथे पर, नरक जाना होगा। तो नारद को कहते नहीं नहीं। तो नारद ऐसे अलग अलग डिवोटीज के पास गए, फिर फाइनली कहां पहुंचे, सारी समस्याओं का समाधान कहां है, भक्त प्रॉब्लम में भी होते हैं ना भक्ति में, तो सोचते वृंदावन जाता हूं 2-3 दिन, एक जगह सारा सोल्यूशन है ब्रज। इसलिए कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मा परित्यज त्यागो माम एकम शरणम ब्रज, ब्रज में मेरी शरण ग्रहण करो। तो ब्रज में ही सारा समाधान है और अंतिम डेस्टिनेशन भी हमारा कहाँ है, वृंदावन है। मोरे अभिलाष विलास कुंज देवोवास। तो जब नारद पहुंचे वृंदावन में तो गोपिकाएं सदैव कृष्ण के स्मरण में मग्न रहते थे, कृष्ण के लीलाओं को आपस में चर्चा करते थे और उनको क्या करते थे, कोई पूतना बन जाती थी गोपी तो दूसरी कृष्ण बन के उसका स्तन पान करने की लीला करके उसको मार डालते थे, कोई गोपी तृणावत बन जाते थे और दूसरे गोपी क्या बन जाते थे, बाल कृष्ण जिसको यशोदा ने लिया है। जितनी भी लीलाएं कृष्ण ने ब्रज में की थी उन सारी लीलाओं को वो फिर से एक्ट करते और उन लीलाओं को करने में सुनने में उसमें आनंद आता था इन गोपिकाओं में। ऐसे पूरा दिन ब्रज के वनों में वो बिताते थे, यमुना के तट पर बिताते थे। तो जब ये नारद पहुंचे तो गोपिकाएं यमुना के तट पर थी, नृत्य करने के मूड में थी। आज नारद जब वहां पहुंचे तो नारद ने समस्या बताई, समस्या बोली कि नहीं कृष्ण को समस्याएं हैं, तो गोपियों को लगा कि क्या मैं अर्पित करूं, अपने आप को देना चाहती हूं। यही उन्नत शरणागति का, उन्नत प्रेम का लक्षण है। तो नारद ने जब बोला, नारद बस चरणों की धूनी चाहिए, अभी देती हूं, आप कुछ बोरी वगैरह लेके आए हो कि नहीं अपने साथ, अभी हम सोचेंगे थोड़ा सा ले जाओ प्रभु जी, ज्यादा ले जाएंगे तो मेरे कर्मों का क्या होगा, मेरा भजन। कहते हैं आप कुछ बोरी वगैरह लाए हो कि नहीं, तो नारद ले गए होंगे। तो वो गए दौड़ते हुए, इतना आनंद आया कि किनकी सेवा करने का सौभाग्य मिल रहा है, कृष्ण का। तुम्हारा सेवा ये दुख का है जात सहित परम सुख। भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं डिवोटी ये नहीं सोचता कि भगवान की सेवा में बहुत कष्ट है, ये कष्टों से छूटने के लिए वो छुप जाता है, ऐसे नहीं। वो कहते हैं कृष्णा भौतिक संसार में जो दुख आता है कार्य में करने में उससे तो बहुत हालत खराब होती है, लेकिन आपकी सेवा में जो दुख है वो दुख महसूस नहीं होता, क्या है वो, परम आनंद है। आप देखो गोवर्धन की परिक्रमा करने जाते हो 22 किलोमीटर चलते हो आप, लेकिन यहां आपको कहा जाए प्रभु जी फरीदाबाद से 22 किलोमीटर दिल्ली में चलते हुए जाइए, इसमें आनंद आएगा या दुख, दुख। लेकिन वही 22 किलोमीटर हम वहां चलते हैं सहित परम सुख, उसमें क्या मिलता है, सुख मिलता है, एक एक पग में आनंद आता है, अरे गोविंद कुंड आ रहा है, अरे वो दानवी वर्तन कुंड आ रहा है, अरे अन्य गांव, अरे आगे वो है क्या पोछड़ी का लोटा। वैसे हम इन डेस्टिनेशन को ढूंढते हुए चलो कम रह गए ना, उद्धव कुंड आ रहा है बस फिनिश। कई बार हम अत्यधिक आनंद से नहीं करते। भक्तिनाथ ठाकुर कहते तुम्हारा सेवा है दुख का है जल सहित परम सुख, आपकी सेवा में जो दुख है वो आनंद का कारण है, वो आनंद देता है। तो गोपियों को इतना आनंद आ रहा था, गए दौड़ के और अपने चरण यमुना के जल में धोए, नाची कूदी और बाहर आ गए और कृष्ण नाम का कीर्तन करते हुए नाचने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो जो नाचने लगे इतना धूल, नारदा कलेक्ट करो कितना धूल चाहिए तुम्हें। नारद कहते तुम्हें भय वगैरह है कि नहीं, आप लोगों को कुछ भयभीत होती है कि नहीं, नरक जाना पड़ेगा, तैयार है, कोई भय नहीं है। भक्त क्या होता है, निडर होता है, किसी चीज का भय नहीं है। कृष्ण की सेवा उसे नहीं मिलती, माया की सेवा करने का मौका ये मिलता है अपॉर्चुनिटी तो भयभीत रहता है, कृष्ण की सेवा करने के लिए थोड़ा भी उसके हृदय में लव मात्र भी भय नहीं होता। इसी कारण से शास्त्र कहते हैं गोपिकार प्रेमे नाहि रसाभास दोष। रसाभास टेक्निकल शब्द है, वो थोड़ा समझ में भी नहीं आएगा तो, लेकिन जनरली हम समझ सकते हैं कि गोपिकाओं के प्रेम में थोड़ा भी क्या नहीं है, दोष नहीं है। इसी कारण से अतएव कृष्णेर करे परम संतोष। इसी कारण से गोपिकाओं की जो सेवा प्रेम में भावना है यही एकमात्र कृष्ण को परम संतुष्टि देती है। और गोपिकाएं कृष्ण के अलावा किससे आकृष्ट नहीं है और कृष्ण भी किसी और से आकृष्ट नहीं है। इसलिए प्रभुपाद गीता के तात्पर्य में लिखते हैं डिवोटी का मतलब है जो कृष्ण के श्याम सुंदर व्रजेंद्र नंदन त्रिभंग ललित जो रूप है उसके प्रति उसका आकर्षण होना चाहिए। अरे गोपिकाएं कृष्ण से आकृष्ट हैं। स्वयं भगवान हरे लक्ष्मी रमन गोपिका रमन हरे ते नारे नारायण। कृष्णदास कविराज कहते हैं ये जो कृष्ण है ये सर्व आकर्षक है, इतने आकर्षक है अपने आप को भी अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं। वो लक्ष्मी बेचारी वैकुंठ में रहती है वो भी किनसे आकर्षित हो जाती है? कृष्ण से। लेकिन छोटे से विलेज ब्रज में रहने वाली गोपिकाएं इवन भगवान का जो विस्तार रूप नारायण है चतुर्भुज रूप उससे आकर्षित नहीं होती। नारायण की कथा श्री कृष्ण आपने गोपिकारा हर्ष कराए थे हय नारायण है। नारायण की क्या बात, कृष्ण भी जब नारायण बने थे वृंदावन में उनसे भी वो आकर्षित नहीं हुए। कृष्ण एक दिन रास क्रीड़ा से निकल जाते हैं और फिर सारी गोपियां उनको ढूंढने के लिए निकलती हैं तो देखते राधा रानी भी नहीं है। पहले तो राधा रानी निकल गई थी फिर कृष्ण निकल गए फिर गोपिकाएं ढूंढने लगी तो फिर कृष्ण राधा रानी के साथ थे उन्होंने राधा रानी को भी छोड़ दिया। फिर ये सारे गोपियां कृष्ण को ढूंढ रही थी ब्रज के वनों में। ढूंढते ढूंढते एक वन में एक कुंज में पहुंची। कृष्ण वहां अपने द्विभुज रूप में थे। वो ये देखना चाहते थे कि मैं उनके दृष्टि के सामने नहीं हूं तो उनके हृदय की हालत क्या होती है, किस प्रकार से वो मेरे प्रति प्रेम की भावना का प्रदर्शन करते हैं, उनकी उस सिचुएशन को देखना चाहते थे कृष्ण। हमें उनके आंखों से अलग हो तो देखा कि वो तो क्रंदन कर रही है ब्रज के वनों में कृष्ण को ढूंढ रही है। तो कृष्ण ने सोचा चलो अभी थोड़ा सा ड्रामा करता हूं। कृष्ण एक कुंज में बैठे है द्विभुज, कृष्ण में सारे अवतार किसमें है उनमें है स्वयं भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन, वो स्वयं भगवान है इसलिए सारे अवतार उनमें है। तो भगवान क्या करते कृष्ण बैठकर और दो हाथ निकाल देते चतुर्भुज हो जाते उस कुंज में। ये गोपियां ढूंढते ढूंढते आते आ रहे देखती तो नारायण है। नारायण नारायण प्रणाम है तुम्हें दंडवत है। हाँ आप बस यही करो कि बताओ कृष्ण कहाँ है। सोचो नारायण से कुछ लेना देना नहीं है। यही चीज कृष्ण को आकर्षित करती है। यही वास्तव में ब्रजवासियों का अनन्य भजन है। रूप गोस्वामी इसलिए कहते हैं अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। कहते हैं कि यही अनन्य भजन की भावना है कि गोपियां किसी और से आकृष्ट नहीं होती। उनका अनुराग कृष्ण के अलावा किसी और से नहीं है। चतुर्भुज मूर्ति देखा है गोपी गनेर आगे सही कृष्ण गोपी कारण नहे अनुरागे। कृष्ण ने चतुर्भुज मूर्ति दिखाया लेकिन गोपियों का कोई उनसे अनुराग नहीं था। गोपियां उनको प्रणाम करके आगे निकल जाती है। तो अत्यधिक प्रीति ये जो प्रेम है ब्रजवासियों का विशेष रूप से गोपिकाओं का जो कृष्ण को बांधने का सामर्थ्य रखता है। तो ऐसी ये गोपिकाएं हैं वृंदावन की ये कृष्ण के स्वरूप शक्ति के विस्तार है। प्रभुपाद कहते हैं दे आर विलेजर्स बट द ब्रजवासीज डू नॉट लव एनीवन मोर देन कृष्णा दैट इज देयर क्वालिफिकेशन। ब्रजवासियों का यही क्वालिफिकेशन है। वो एक छोटे से गांव में रहते हैं है ब्रजवासी लेकिन वो कृष्ण से अधिक प्रेम किसी और से नहीं करते। प्रभुपाद ने का यही क्वालिफिकेशन है और यही वास्तव में ब्रजवासी वही कहलाया जा सकता है जो कृष्ण से अत्यधिक प्रीति रखे। इसलिए तीन प्रकार के जो गोपिकाएं थे एक तो थी साधन सिद्ध गोपिकाएं जो कई सारे ऋषि मुनि जब भगवान राम को देखा दंडकारण्य में उनको लगा मुझे तो माधुर्य भाव इनसे स्थापित करना है तो भगवान ने कहा नहीं अभी मैंने व्रत ले रखा है। कौन सा व्रत? एक पत्नी व्रत। आप अगले कृष्ण बन के आऊंगा ना तब आप ब्रज में निवास करोगी गोपिकाओं के रूप में। तो जितने भी दंडकारण्य के ऋषि मुनि थे साधना करके उन्होंने क्या किया आगे ब्रज में गोपिकाओं के रूप में जन्म लिया था। और ये सारे वेद श्रुति ये भी पर्सनिफाइड है पर्सन से। इन्होंने भी चाहा कि भगवत भजन गोपिकाओं के भाव में तो ये भी जन्म लिए थे गोपिकाओं के रूप में, और दूसरी दूसरे प्रकार की गोपिया है नित्य सिद्ध गोपिका है। नित्य सिद्ध मतलब जो सदैव कृष्ण की ही विस्तार है, एक प्रकार से श्रीमती राधिका चंद्रावली अष्ट सखी आदि जितनी सारी गोपिकाएं हैं वो नित्य सिद्ध गोपिकाएं हैं। और तीसरी है देविया। हाँ, भगवान जब स्वर्ग में अवतरित होते हैं इंद्र की वेल विशर बनकर, तो भगवान के साथ भगवान की शक्तियां भी अवतरित होती है वहां देविया बनकर। तो वो देविया भी जब भगवान कृष्ण अवतरित हुए तो वो स्वर्ग की देविया भी क्या हुई थी, प्रकट हुई थी इस संसार में। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु यही सिखाते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा दास सख्य वात्सल्य श्रृंगार चारी रस चारी भावे भक्त जत कृष्ण तार वश। कृष्ण किनके वश में है, इन चार प्रकार की भावना से जो भजन कर रहा है उनके वश में केवल कृष्ण है, अन्यता नहीं। दास सख्य वात्सल्य और माधुर्य की भावना, इसी कारण से कृष्ण द्वापर युग में आते हैं, कई सारे क्रीड़ाएं लीलाएं करते हैं इन रसों का आस्वादन करने के लिए, और उनके प्रेम के वो वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सकल जगत मोरे करे विधि भक्ति, विधि भक्ति ब्रज भाव पायते नाहि शक्ति। तो सारा जगत विधि वैधि भक्ति कर रहा है, विधि भजन कर रहा है, जिसके द्वारा वृंदावन की भावना को प्राप्त करना असंभव है। रूप गोस्वामी भक्ति के तीन डिविजन बताते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। तो इस प्रकार से केवल जो वैधि रागानुगा साधना भक्ति है जिसको करने मात्र से जो भाव उत्पन्न होते हैं उससे ही वृंदावन की प्राप्ति संभव है। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज इस चीज का वर्णन करते हैं। इसलिए है चैतन्य महाप्रभु ने कहा गोपीगण मध्य श्री राधा ठाकुरानी, इन गोपियों में भी सर्वोत्कृष्ट कौन है, श्रीमती राधिका है। निर्मल उज्जवल रस प्रेम है लखनी, जिनका प्रेम सर्वाधिक शुद्ध है, जिसकी जिनके प्रेम की तुलना इस संसार से नहीं किए जा सकती। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु यही सिखाने और देने आए हैं कि हर एक जीव इस शुद्ध भक्ति को स्वीकार करे। तो कोई पूछ सकता है तो ये शुद्ध भक्ति प्रश्न उठ सकता है कि शुद्ध भक्ति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। नरोत्तम दास ठाकुर एक छोटा सा सूत्र सिखाते हैं शुद्ध भक्ति के लिए। नरोत्तम दास ठाकुर ने ग्रंथ लिखा प्रेम भक्ति चंद्रिका, जिसमें हम ये प्रार्थना उसका पहला अध्याय है जिसका नाम है गुरु महिमा। तो गुरु महिमा में वो सॉन्ग आता है सबसे शुरुआत में, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म, जो गुरु वंदना हम गाते हैं, तो उसी पहले अध्याय में वो शुद्ध भक्ति का वर्णन करते हैं। तो शुद्ध भक्ति का वर्णन करते हुए कृष्णदास कविराज कहते हैं शुद्ध भक्ति क्या है, वो कहते हैं अन्य अभिलाष छाड़ी ज्ञान कर्म परिहरे काय बने करे वो भजन साधु संगे कृष्ण सेवा नापो जीवो देवी देवा यही भक्ति परम कारण। वो कहते हैं अन्य अभिलाष छाड़े ज्ञान कर्म परिहरे काय बने करे वो भजन। व्यक्ति को शुद्ध भक्ति करने के लिए क्या करना होगा, ये जो अन्य अभिलाषाएं हैं उनको त्यागना होगा। चैतन्य महाप्रभु की सर्वश्रेष्ठ देन क्या है, उनके भक्त है, और उनके भक्तों की सर्वश्रेष्ठ देन क्या है, उनके ग्रंथ है। महाप्रभु ने रूप सनातन को वृंदावन भेजा और उनको का पहले इतने सारे ग्रंथ है, क्या कारण था उनको ग्रंथों की रचना करने के लिए बोला, क्योंकि ये सारे जो ग्रंथ व्यासदेव ने लिखे हैं इनमें उन्होंने एक चीज को छुपा दिया है, और वो क्या है, पंचम पुरुषार्थ। व्यासदेव की लेखनी में अधिकतर जो दिखाई देता है और व्यक्ति इंस्पायर होता है प्राप्त करने के लिए है, वो मोक्ष है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार चीजों कहे वर्णन अत्यधिक इन सारे ग्रंथों में प्राप्त होता है, लेकिन व्यास देव ने भी ये जो पांचवी चीज है जिसको चैतन्य महाप्रभु ने खोला, जिसको महाप्रभु कहते हैं पंचम पुरुषार्थ, और वो पंचम पुरुषार्थ क्या है, मोक्ष से भी श्रेष्ठ भगवान के प्रति प्रेम की जो भावना है। इसलिए महाप्रभु ने कहा ग्रंथ लिखो, लेकिन कौन से महाप्रभु ने वर्ड यूज किया, भक्ति ग्रंथ। इन गोस्वामियों ने ये भक्ति ग्रंथ दिए हैं, और जिन ग्रंथों से देखते हैं कि भक्ति के अलावा किसी और चीज प्राप्ति के लिए व्यक्ति लालायित नहीं होगा। यही तो प्रभुपाद के ग्रंथ है। प्रभुपाद के ग्रंथ कोई पढ़ता है तो उसकी कोई अभिलाषा नहीं रहती, भक्ति से भरे हुए ग्रंथ है। और प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़कर व्यक्ति शुद्ध भक्ति के लिए लालायित होता है, अनन्य भजन की कामना करता है। क्योंकि प्रभुपाद का ग्रंथ किसी भी पेज में पढ़ो, वहां किस चीज का वर्णन है, कृष्ण के अनन्य भक्ति, शुद्ध भक्ति का वर्णन मिलता है। इसलिए हर प्रकार का जो व्यक्ति है प्रभुपाद के ग्रंथों से प्रभावित होता है और शुद्ध भक्ति की कामना करता है। तो हृदय में शुद्ध भक्ति या दूसरा शब्द है निरुपाधि, उपाधि से रहित भक्ति जागृत करने से ही कृष्ण के लिए प्रेम की भावना उत्पन्न हो सकती है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं सबसे पहली चीज अन्य अभिलाषा, अन्य अभिलाषा, अन्य अभिलाषा का वो वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये शुद्ध भक्ति में अन्य अभिलाषा में सबसे पहली, ये अन्य अभिलाषा की तुलना उसके दो डिवीजन बताते हैं। वो कहते हैं अभिलाषाएं तो बहुत है, लेकिन प्रमुख रूप से दो है जीव के अंदर। एक अभिलाषा क्या है, भोग अभिलाषा, और दूसरी है मोक्ष अभिलाषा। भोग करने की जो प्रवृत्ति है इस संसार में, मतलब हम भक्ति करते हैं लेकिन वो सकाम भक्ति है, उस भक्ति में भोग करने की वासना है। हम भक्ति में लगने के बाद भी हम क्या चाहते हैं, कनक कामिनी और प्रतिष्ठा, ये तीन वस्तुएं चाह करता है। इसी कारण से तो देवतागण वो भक्त भी बनना चाहते हैं लेकिन बड़ा ऑपुलेंस भी चाहिए, अप्सराएं भी चाहिए, सोमरस भी चाहिए, और कौन चाहिए, भगवान आपके भक्त भी हैं। देवतागण इसलिए क्या कहलाते हैं, शुद्ध भक्त नहीं है, देवताओं के कारण क्या है, भोग वासना है, इसलिए वो मिश्र भक्त है। तो ऐसे भक्त जो कंट्रोल करने की भावना चाहते हैं तो भगवान कहते हैं ठीक है, मेरे पास तुम्हारे लिए सेवा अवेलेबल है, स्वर्ग में जाओ, ब्रह्मांड की कंट्रोल बन के रहो, ताकि क्या है तुम्हारी भोग भावना की भी पूर्ति होगी और साथ साथ मेरी सकाम भक्ति में भी लगे रहोगे। इसलिए कृष्ण कहते हैं गीता में अव्यभिचारिणी भक्ति कैसे चाहिए, सगुणान समति तैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अव्यभिचारिणी भक्ति करने से ही व्यक्ति वास्तव में तीन गुणों से परे हो सकता है, और भगवान उस भक्ति की कामना करते हैं। तो अनन्य भक्ति को इन शब्दों में लिखा जा सकता है, कृष्ण सुखार्थ भजन। कृष्ण किसके सुख के लिए भजन करना है, कृष्ण के सुख के लिए, बस ये सरल डेफिनेशन है अनन्य भक्ति का। इसी कारण से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भगवत गीता का जो श्लोक है अनन्य भाव, 9वें अध्याय का 30वां श्लोक, जिसमें शब्द आता है अनन्य भाव, उसकी टीका करते हुए वो लिखते हैं अनन्य भाव का मतो हन्य देवान तरम मद भक्ते रान्यता कर्म ज्ञानादिकम मद काम नातोन्य राजति कामना न भजते स साधु। वो कहते साधु कौन है, वो कहते जो मेरे अतिरिक्त अन्य देवताओं का भजन नहीं करता, मेरे भक्ति के अलावा दूसरे कर्मों में का अनुष्ठान नहीं करता, और उसके हृदय में मेरी भक्ति के अलावा राज्य आदि प्राप्ति की कामना नहीं है, हाँ उसके लिए कोई स्थान नहीं है भौतिक कामना के लिए, और जो केवल मेरा अनन्य भजन करता है वही व्यक्ति साधु है, वही व्यक्ति वास्तव में अनन्य भजन भक्त है। इसलिए भक्त बनने का मतलब है अनन्य भक्त बनना। हाँ अनन्य भक्त का उदाहरण हजारों वैष्णव के जीवन में देखते हैं। दक्षिण भारत में
हम गए थे, हमने एक स्टोरी सुनी थी एक आचार्य के बारे में। तो वहां श्रीरंगम में एक डिवोटी थे जिनका नाम था भक्ति सार। क्या नाम था? ये नाम उनको शिवजी ने दिया। भक्ति सार का मतलब है शुद्ध भक्ति के अलावा वो किसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं है, शुद्ध भजन ही उसके लिए सारतम है। तो ऐसे भक्ति सार ये जो अलवर थे, तो ये जो डिवोटी ये क्या करते थे, श्रीरंगम इतना बड़ा टेंपल है जिसके दीवार के कोने में वो बैठे रहते थे और सदैव भगवान के नामों का कीर्तन करते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक काम अपने हाथ से करते रहते थे, एक काम क्या, वो कभी नए वस्त्र नहीं धारण करते थे। जहां भी फटे पुराने कपड़े गिरे हुए नजर आएंगे वो उठाते थे और उसको सिलाते थे और उसको पहनते थे। वो कपड़े खराब नहीं होते, खराब होंगे तो उनको फेंक कर फिर दूसरे पुराने वस्त्र कहां से उठाएंगे। और वो रंगनाथ के मंदिर के दीवार के साथ बैठकर रंगनाथ का गुणगान अपने जीवा से करते रहते थे और वो कपड़े सिलाया करते थे। और कैसे सिलाते थे, एक छोटा सा जो झाड़ू होता है, बड़ा वाला बाहर झाड़ू लगाते हैं उसका जो छोटा सा स्टिक आता है, वो जो स्टिक लेकर उसमें कैसे तो धागा डालकर या पीछे बांधकर उसे सिलाया करते थे। तो इस प्रकार से जब उनके दिन बीत रहे थे तो एक दिन शिवजी और पार्वती ऊपर से जा रहे थे, तो शास्त्र कहते शिवजी और पार्वती की छाया जिसके ऊपर गिरती है उसके हृदय में भौतिक इच्छाएं बहुत जागृत हो जाती है, तो उसकी भौतिक इच्छाएं बलवती हो जाती है। तो ये शिवजी पार्वती उनके ऊपर से गुजर गए, उनकी छाया भी गिरी थी, इसके ऊपर कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो रुक गए, उन्होंने कहा ये क्या हो गया, हमें देखने मात्र से लोग आके कहते हैं अपनी भौतिक इच्छाओं को समर्पित करके डिमांड्स की मांग करते हैं। तो पार्वती कहते प्लेन को नीचे लीजिए, आदेश है। पार्वती देवी का आदेश शिवजी धारण करते कहा सर के ऊपर, तो शिवजी का जो प्लेन है लैंड हो गया वहां। जो डिवोटी बैठा था श्रीरंगम मंदिर के वॉल के पास या दीवार के पास, वहां जब वो उतरे उन्होंने कहा, और पहले तो क्या देखा आश्चर्यमय चीज कि जैसे उनकी छाया गिर रहे थे तो ये जो डिवोटी है वो छाया से इधर भाग रहा था, उधर भाग रहा था, इधर भाग रहा था। पार्वती को तो गुस्सा आ रहा था, सारे हमारे छाया पढ़ने के लिए इतने व्याकुल रहते हैं और ये भाग रहा है, कोई छाया नहीं कर रहा है, और वो सोच रहा था तो ये अमंगल हो रहा होगा मेरे साथ। भक्ति सारे को डिवोटी क्या सोच रहे थे, अमंगल होगा, भौतिक इच्छा आ जाएगी। कई बार हमें भौतिक इच्छाएं पूरी कम हो जाती है तो हम थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, थोड़ी सी भौतिक इच्छाएं और बढ़ाओ ना, घूमने चलते हैं। तो ये डिवोटी इधर उधर भाग रहा था, पार्वती ने कहा नीचे चलिए, तो नीचे जाकर उनके सामने ही खड़े हो गए। शिवजी ने कहा, कहते ये ना कृष्ण का भक्त है। किसका भक्त है? पार्वती को कहा, ये कृष्ण भक्त बड़े चतुर होते हैं, उनको फंसाना इतना ईजी नहीं है। वो कृष्ण के साथ क्या हो चुके एक बार फंस गए हैं। तो पार्वती ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, हम यहां उपस्थित हैं और हमारे दोनों के सामने इसको कुछ देना चाहिए, इसने कुछ मांगना चाहिए, आप जाइए उनके सामने और वो उसको कुछ ऑफर कीजिए। तो कौन टाल सकता है, पार्वती की बात उनके शिवजी के अंदर हिम्मत है टालने की नहीं। वो गए, कहते हे कृष्ण डिवोटी, कृष्ण के भक्त, मैं आपको तो स्वर्ग देना चाहता हूं। पार्वती ने कहा था कि पार्वती जाओ उसको स्वर्ग दे दो, राजा बना दो। तो ये जाते हैं, कहते नहीं मैं बिजी हूं, मुझे स्वर्ग वगैरह नहीं चाहिए। कहते मैं बिजी हूं, कपड़े सिलाने में लगा हुआ हूं और कृष्ण का गुणगान अपने मुख से करते जा रहा है। कहते हैं मैं तुम्हें ब्रह्मा का कोष दे देता हूं। नहीं नहीं वो तो सबसे बेकार है, डिवोटी कहता है। तो ब्रह्मा का पोस, वो कहते हैं ऐसे बहुत सारे पोस ऑफर करने लगे और उन्होंने कहा
कुछ देना चाहते हो ना, एक काम करो मेरे लिए शिवा, ओ लॉर्ड शिवा। क्या कहते, देखो मैं जो सिलाई कर रहा हूं ना, तो उसका जो धागा है वो बार बार नीचे गिर रहा है, उसको ऐसा कुछ करो, उसको बांध के रखो, ताकि मैं क्या करो, कंटिन्यू सिलाई करो और कृष्ण का गुणगान गाओ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जैसे ये शिव जी और कुछ कह रहे थे, कहते मांगो कुछ और भी मांगो, कहते नहीं आपके साथ आपके साथ इतनी ट्रबल है, मुझे और कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। शिव जी पानी पानी हो गए, शिव जी को गुस्सा आ गया, समझता गया अपने आप को। पार्वती ने कहा देखो वो कह रहा है धागा, उसको लगाओ पीछे उसके उस नीडल को। कहते आपका अपमान कर रहा है, पार्वती ने क्या कहा, आपका तो अपमान कर रहा है, आप अपनी तीसरी आंख खोलिए। शिवजी तो अभी कुछ नहीं कर सकते थे, पत्नी गुस्सा दिलाए तो आप सोच सकते हो कितना गुस्सा आता है व्यक्ति को, वो पावर हाउस है। तो शिवजी को जैसे कहा और अचंभित, शिवजी भी भूल गए सारी चीजें, कृष्णा डिवोटी के ऊपर उन्होंने अपना तीसरा आंख खोला और इतना फायर, हाँ फायर ही निकल रहा था। तो ये भक्ति, ये डिवोटी भी कम नहीं थे, उन्होंने भी अपना अंगूठा दबाया, इतना तेज फायर निकला कि शिवजी के पीछे मुझे इस लीला से जब मैं सुन रहा था वहां कुछ साल पहले, तो अमरीश महाराज और दुर्वासा की याद आ रही थी। तो वैसे ही शिवजी अपना जान बचाने के लिए वो फायर पीछे लगे भाग रहे थे और कहां भाग रहे थे, श्रीरंगम टेम्पल के ऊपर ऐसे परिक्रमा करते जा रहे। तो फिर भगवान को दया आई, शिवजी कहते रंगनाथ प्लीज सेव मी, मुझे बचाओ। तो भगवान रंगनाथ त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम, वर्षा करने के लिए बादल भेजते हैं, इतनी वर्षा करते हैं कि सारी चीजें ठंडी हो जाती हैं। और शिवजी कहते कि मैंने अपराध कर लिया है आपके प्रति। शिवजी कहते हैं भगवान ने तो वैकुंठा क्लाउड्स भेजे थे, इस संसार के संवर्तक क्लाउड नहीं भेजे थे, कौन से क्लाउड थे, वैकुंठा क्लाउड्स। तो जब शिवजी ने देखा कि ये जो डिवोटी है इसको कृष्ण सेवा के अलावा, कृष्ण के गुणगान के अलावा कुछ नहीं चाहिए, इसलिए उनका नाम उन्होंने क्या रखा, भक्ति सार। क्या नाम रखा, भक्ति सार। जिनका जीवन शुद्ध भक्ति ही है, हाँ भक्ति ही उनका वास्तव में सार है। तो इस प्रकार से शास्त्रों में ऐसे हजारों उदाहरण हम देखते हैं कि डिवोटी सदैव शुद्ध भक्ति की ही कामना करता है और अन्य अभिलाषता शून्य ये उसका विशेष गुण होता है। तो दूसरी अभिलाषा क्या है जीव के अंदर, मोक्ष कामना। वो भोग कामना के अंदर बहुत इच्छाएं हैं, अन्य अभिलाषा की कैटेगरी में ये दो हैं, एक है भोग कामना, दूसरी है मोक्ष की कामना। मोक्ष की कामना भी अल्टीमेटली कोई व्यक्ति भजन करता है मोक्ष ही चाहता है। अब किसी संसारिक व्यक्ति को मिलो वो कहेगा क्या बस मोक्ष ही प्राप्त करना है अंत में, और क्या रखा है इस संसार में, स्वर्ग ही जाना है। तो अल्टीमेटली अधिकतर लोग मोक्ष चाहते हैं, लेकिन मोक्ष की तुलना कैवल्यम नरकायते, मोक्ष की तुलना किससे की गई है, नरक से की गई है। क्योंकि मोक्ष में क्या है, भगवान की सेवा का सुख नहीं है, मोक्ष में क्या नहीं है, भगवत सेवा का सुख नहीं है। और भक्ति में क्या है, भगवत सेवा का सुख है। इसलिए भक्त तीसरे स्कंद में भागवत में आता है, भक्त कहता है कृष्णा मुझे मुक्तियां नहीं चाहिए, मोक्ष आदि नहीं चाहिए, मैं तो आपकी सेवा में नियुक्त होना चाहता हूं, सेवा के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो नरोत्तम दास ठाकुर पहली चीज ये कहते हैं, अन्य अभिलाष छाड़ी, ये अभिलाषा पर छोड़ो, और दूसरा क्या है, ज्ञान कर्म परिहरी, ज्ञान और कर्म को दूर रखो। कर्मे ज्ञानी भक्ति हीना यहाँ के कर्म भिन्न। अगले श्लोक में वो कहते हैं कि कर्मी का और ज्ञानी का संग नहीं करना चाहिए। तो दूसरी चीज वो कहते हैं शुद्ध भक्ति के लिए पहली थी हो गई अन्य अभिलाषा और दूसरी क्या है अन्य मिश्रण। भक्ति में मिश्रण किस चीज का है, दो चीजों का, ज्ञान और कर्म का मिश्रण। तो कर्म मिश्रण क्या है कि स्मृति शास्त्र आदि के आधार पर व्यक्ति कर्म कांड आदि में लिप्त हो जाता है और भौतिक भोग की कामना के लिए कई सारे रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज में निमग्न रहता है, तो उसके द्वारा भक्ति में मिश्रण आ जाता है। और ज्ञान का क्या है, निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान रखना कि जीव और ब्रह्म क्या है, एक वस्तु है। ये प्रतिपादित करने वाला जो ज्ञान है वो वास्तव में शुद्ध भक्ति के लिए हानि है। लेकिन भक्ति से निकला हुआ ज्ञान और भगवान की सेवा के लिए किए जाने वाले कार्य है वो भगवान के स्वरूप शक्ति में आते हैं, जो भक्ति के लिए क्या है, अनुकूल है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कर्मी और ज्ञानी का संग नहीं करना चाहिए। कर्मी कौन है, जो स्वर्ग प्राप्ति की कामना करता है और इस आशा से यज्ञ आदि करने में लगा रहता है, लेकिन कृष्ण कहते क्षीणे पुण्य मरते लोकम विशंति। और जो ज्ञानी है, जो ब्रह्म ज्ञानी है, तो ऐसे ब्रह्म ज्ञानी और कर्मी का संग नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि इनके संग से वो कार्य करने के लिए हमारे अंदर इच्छा जागृत होती है। सबसे प्रॉब्लम क्या है, इच्छा, डिजायर आती है तो नेचुरली फिर आगे बढ़ता है व्यक्ति उसकी पूर्ति के लिए। तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं इन दोनों की संग से दूर रहना चाहिए। और आखिर आगे वो कहते हैं काया मने करीबो भजन, अपना मन और शरीर के द्वारा भगवान का भजन करना चाहिए। ऋषि के गोविंद सेवा, अपने सारे इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। और विशेष शुद्ध भक्ति का कारण वो कहते हैं साधु संगे कृष्ण सेवा ना पूजिबो देवी देवा। कितना सरल है, बोले साधु संगे कृष्ण सेवा ना पूजिबो देवी देवा, यही भक्ति परम कारण, ये शुद्ध भक्ति है। कि साधु संग में कृष्ण की सेवा करना और अन्य देवताओं की पूजा ना करना, यही भक्ति क्या है, परम कारण है कृष्ण को आकर्षित करने के लिए। हाँ, तो हम तो अभी भी डर लगा रहता है, प्रणाम करो कि नहीं करो, घर में गणेश जी हैं उनका क्या होगा, नहीं तो सूंड से मारेंगे मुझे स्वप्न में आकर, डरते रहते हैं। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा साधु संग ही भगवत सानिध्य प्राप्त करने का सर्वोत्तम उपाय है। क्योंकि साधुओं की संगति में हमें भगवत कृपा हमें अनुकूल हो जाती है और भगवान की सेवा करने के लिए हमारे अंदर श्रद्धा का विकास होता है और श्रद्धा से ही फिर हम गुरु का आश्रय ग्रहण करते हैं और धीरे धीरे प्रेम भक्ति को प्राप्त करते हैं। इसलिए शास्त्र साधु संघ के ऊपर जोर देते हैं। और साधु संघ में क्या होगा, कृष्ण की सेवा होगी। तो कृष्ण की सेवा होती है नवदा भक्ति के द्वारा। ये जो नवदा भक्ति है वो कृष्ण की सेवा करने का सर्वोत्तम शुद्ध उपाय है। और उसमें भी क्या है, श्रवण कीर्तनम, शुद्ध भक्ति के लिए परम साधन है। इसलिए महाप्रभु नरोत्तम दास ठाकुर आगे कहते हैं ना पूजिबो देवी देवा, यही भक्ति परम कारण, अन्य देवी देवाओं की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यही भक्ति वास्तव में कृष्ण को प्राप्त करने का परम साधन है। इसलिए मैं छोटा सा एक पास टाइम बताकर एंड करता हूं नरोत्तम दास ठाकुर का, कि किस प्रकार से एक भक्त को दृढ़ होना चाहिए। रघुनाथ दास गोस्वामी ने एक छोटी सी बुक लिखी 11 श्लोक की मन शिक्षा, जिनमें अपने मन को सिखाने के लिए उन्होंने 11 श्लोक दिए। तो उसमें वो सबसे पहले श्लोक में कहते हैं, गुरो गोष्ठे गोष्ठालयेषु सुजने भूषण गुणे सौ मंत्रे श्री नामनी व्रज नवयुव द्वंद्व शरणे सदा दम्बम हित्वा कुरुरतिम अपूर्वा अतितरा आये स्वांतर भ्राता चटुभिरया दिपे धृतपदा। वो अपने मन को प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? सबसे पहले श्लोक में वो कहते कि हे आये भ्राता स्वांत धृतपदम, हे मेरे भाई मन, मैं तुम्हें क्या कर रहा हूं, आपके चरण पकड़ रहा हूं, आपके पांवों को पकड़कर आपसे निवेदन कर रहा हूं। बहुत मीठे शब्दों में बोल रहा हूं, सदा हित्वा दम्भम, हे मेरे पागल मन, अपना ये जो दम्भ है ना, घमंड है ना तुम्हें बहुत, गर्व है, अहंकार है, इसको क्या करो, हमेशा के लिए छोड़ दो। सबसे पहली चीज मन को कहते हैं, क्योंकि इस घमंड से ही सारी चीजें शुरू होती है, फॉल्स ईगो। तो कहते हैं हित्वा दम्भम, इस अहंकार को छोड़ो और फिर करो तो क्या करो, अतितराम कुरुम अपूर्वम रति। कहते हैं मैं तुम्हें आठ चीजों के प्रति अत्यधिक आसक्त होने के लिए कह रहा हूं, तुम आठ चीजों से सर्वाधिक प्रेम उत्पन्न करो हे मेरे मन, यदि तुम मेरे असली वेल विशर हो, असली हितैषी हो। तो रघुनाथ दास गोस्वामी क्या कहते हैं, आठ चीजें, वो कहते हैं गुरो, सबसे पहले मेरे मन इनसे आसक्ति उत्पन्न करनी है तो सबसे पहले कौन है, गुरु, आध्यात्मिक गुरु, क्योंकि आध्यात्मिक गुरु की शरण से ही आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है, यश प्रसादात भगवत प्रसादो। और दूसरा वो कहते हैं गुरु गोष्ठे, गोष्ठे गोष्ठे मीन्स वृंदावन धाम, वृंदावन धाम के प्रति तुम अपनी आसक्ति का विकास करो। और तीसरी है गोष्ठालयेषु, गोष्ठालयेषु मीन्स वृंदावन के जो धामवासी हैं, ब्रजवासी गण हैं, जो भगवान कृष्ण के जो परिकर है, पार्षद है, चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद आदि हैं, हाँ उनसे आसक्ति विकसित करो। और चौथी चीज कहते हैं सुजना, सुजन मीन्स वैष्णव, कृष्ण के जो भक्त है उनके प्रति आसक्ति या प्रेम की भावना उत्पन्न करो। और पांचवी चीज है भूसुर गणे, भूसुर गणे मीन्स ब्राह्मण, जो भगवान को प्रिय है। और छठी चीज वो कहते हैं स्व मंत्रे, जो आध्यात्मिक गुरु से आपको मंत्र प्राप्त हुआ है, दीक्षा मंत्र, उन मंत्रों को जप करने के लिए एक अत्य अनुराग रखो। और सातवीं चीज कहते हैं श्री नामनी, श्री नामनी क्या है, सौ मंत्र मीन्स जो ब्राह्मण दीक्षा में मंत्रास मिलते हैं शिष्य को गुरु से, और श्री नामनी मीन्स हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान कृष्ण का ये जो पवित्र नाम है, इस कृष्ण नाम के प्रति। और आठवीं चीज क्या है, व्रज नव युवम द्वंद्व शरणे, वृंदावन में जो सदा नए नवनीत या नए रहने वाले जो राधा कृष्ण युगल जोड़ी है उनके प्रति क्या रखो, अति अनुराग रखो। तो इस प्रकार से ये जो रघुनाथ दास गोस्वामी है इनके चरणों में प्रार्थना करते हैं अपने मन के चरणों में, और उस मन को कहते हैं कि आप क्या करो, इन चीजों में अनुराग उत्पन्न करो। तो नरोत्तम दास ठाकुर के एक शिष्य थे जिनका नाम था चांद राय, उनका एक पांच मिनट के लिए उनका उपासना में सुनाता हूं कि कितने वो फिक्स थे भगवान के नामों के प्रति उनका जो अनुराग, और वो किन से प्राप्त हुआ था, उनके गुरु के द्वारा। तो नरोत्तम दास ठाकुर खेतुरी ग्राम में निवास कर रहे थे, तो वहां उन्होंने बहुत अत्यधिक प्रचार आदि करते थे, हजारों हजारों ब्राह्मण स्मार्ट ब्राह्मण आदि बड़े बड़े जमींदार राजा लोग उनके शिष्य बन रहे थे। इतने सारे लोगों को शिष्य बनाया, तो उनके गांव के पास ही एक स्थान था जिसका नाम था गढ़ेरहाट, जिसमें एक ब्राह्मण निवास कर रहा था जो राघवेंद्र जिनका नाम था। उनके दो बेटे थे, एक का नाम था चांद राय और दूसरे थे संतोष। तो ये चांद राय इतने पापी थे कि पाप इन्होंने कहा जाता है कि जगाए मगाए से भी अत्यधिक इन्होंने पाप कर लिया था। रोज किसी ना किसी को मारना, लूटना, स्त्रियों को, गर्ल्स को चुराना और दूसरों की पत्नियों की हत्या करना। तो चित्र को लिख लिख के बेचारे थक गए थे। उन्होंने यमराज को बुलाया, यमराज को कहा देखो ये बंगाल में पहले हमने सुना था दो थे, कौन थे? जगाए मधाए, चैतन्य महाप्रभु ने उनके ऊपर कृपा की थी, लेकिन अभी ये दूसरे दो भी प्रकट हो गए हैं, चांद राय और संतोष। तो ये चांद राय, उन्होंने कहा इनका बहुत घृणित जीवन है, मैं तो थक गया इनका रिकॉर्ड रखते हुए। यमराज कहते ये तुम्हारा कंटिन्यूअस रहने वाला सेवा है। तो जब इतने पापी थे तो अचानक ये जो चांद राय था ये बहुत हट्टा कट्टा था, पावरफुल फाइटर था, कोई भी उसके सामने टिकता नहीं था। लेकिन एक दिन एक भूत ने उसको क्या कर दिया, पछाड़ दिया, भूत उसके शरीर में जाकर घुस गया। तब से देखा कि वो पागल बन गया, हमाम धन संपदा थे, पतला होते जा रहा था, मरने वाला था, हजारों वैद्यों को बुलाया गया, ओझा जो भूत उतारने वाले उनको बुलाया गया और उनके पिता राघवेंद्र बहुत दुखी थे। तो ये ओझा ने कहा इनके ऊपर का भूत दूर करना है तो एक ही उपाय है, अभी एक महान भक्त यहाँ निवास कर रहा है श्री नरोत्तम दास ठाकुर, उनके चरण धूलि इसके सर पर गिरे, वो इनके सामने प्रकट हो तो इनका भूत उतर सकता है। तो वो जो चांद राय के पिता थे राघवेंद्र ने लेटर लिखा, किसको लिखा? नरोत्तम दास ठाकुर के पिता कृष्णानंद दत्त या कृष्णानंद मजुमदार, उनको कहा कि आपके बेटे को मेरे गांव में भेजिए मेरे पुत्र को दर्शन देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। तो राघवेंद्र उनके जो पिता थे नरोत्तम दास ठाकुर ने लेटर पढ़ा, वो लेटर उन्हें नरोत्तम दास ठाकुर को नहीं दिखाया, खुद ही सोचा कि ये खेतुरी ग्राम से वो बाहर नहीं जा सकते हैं, इनको कोई भी नरोत्तम दास ठाकुर को बाहर नहीं ले जा सकता। तो उन्होंने कहा वो नहीं आ सकते वहां। तो इनके पिता बहुत दुखी हो गए और देखा रोने लगे। एक दिन ये जो चांद राय था ये जब सो रहा था, एक दुर्गा का बड़ा भक्त था, सारे लूटपाट करने के बावजूद भी किसका भजन करता था? दुर्गा देवी का। तो दुर्गा देवी उनके स्वप्न में आती और हंसती रहती है, ब्राह्मणी के रूप में आते और जोर जोर से हंसती है, कहते तुम तो अति पापी हो, मेरे लिए ऑफरिंग डालते हो, मेरी सेवा पूजा करते हो, तो लेकिन वास्तव में मैं उस व्यक्ति की बहुत बड़ी शत्रु होती हूं जो व्यक्ति क्या करता है, कृष्ण के अलावा किसी और की सेवा करता है, मैं उस व्यक्ति का विनाश करूंगी। तो ये चांद राय ने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा कृष्ण की भक्ति में लगो, दुर्गा देवी ने कहा स्वप्न में आकर। तो वो तैयार हो गए और जैसे ही वो उठे तो उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर को रिक्वेस्ट की लेटर से। तो नरोत्तम दास ठाकुर उनके घर आते हैं, उनसे मिलते हैं और नरोत्तम दास ठाकुर उनके सर पर अपने जैसे चरण रखते हैं तो भूत उनके शरीर से बाहर आकर बोलने लगता है। वो कहता है कि मैं आप जैसे महान वैष्णव का दर्शन और चरण धूलि लेने के लिए इसके शरीर में बैठा था। कहते नरोत्तम तुम्हारा जो गांव है ना खेतुरी, वो वृंदावन से अभिन्न है, मैं तो उस गांव में जन्म लेना चाहता हूं। तो इस प्रकार से वो चांद राय कुछ दीक्षा देते नरोत्तम दास ठाकुर दोनों भाइयों को। और एक दिन ये दोनों भाई नरोत्तम दास ठाकुर को मिलने गए और वापस जब अपने गांव में आ रहे थे तो राजा के सैनिकों ने उनको पकड़ा, क्योंकि इसने बहुत अत्याचार किया था, राजा के लोगों को भी मारा था, उनसे भी धन ले लिया था। तो जो मुस्लिम राजा था उसने उनको जेल में डाल दिया। जेल में डालकर इनके जो पिता थे उन्होंने अनाउंसमेंट की पूरे जगत में कि जो भी व्यक्ति मेरे बेटे को छुड़ाएगा जेल से उसको अमाप धन में दूंगा। तो एक तांत्रिक था जिसने क्या किया, एक सुरंग बनाई,
उस चांदराय के घर से जेल के अंदर, और उस काली का भक्त था वो जो सुरंग उसने बनाए जेल के अंदर निकला, वो तांत्रिक जहां ये चांदराय को जेल में डाला हुआ था, और कहा कि आप मेरे साथ चल सकते हो, लेकिन चलने के लिए आपको ढाई अक्षर जो दुर्गा मंत्र है उसका उच्चारण करना पड़ेगा। हाँ, दुर्गा मंत्र, दुर्गा का मंत्र बोलना पड़ेगा। चांदराय कहते असंभव है, मैं तो मेरे जो आध्यात्मिक गुरु हैं, कौन थे उनके आध्यात्मिक गुरु, नरोत्तम दास ठाकुर, उन्होंने जो मुझे हरि नाम दिया है, कौन सा मंत्र दिया था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उन्होंने कहा कि मुझे जो मंत्र नरोत्तम दास ठाकुर ने दिया है कृष्ण नाम, मैं यहां सड़ के मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन इतनी निष्ठा कृष्ण नाम के प्रति या गुरु ने दिया हुआ जो आध्यात्मिक मंत्र है, जो रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे थे श्री नाम ने श्री मंत्र, तो उन्होंने कहा मुझे आना नहीं है, जेल से नहीं छूटना है, मैं तो केवल कृष्ण का गुणगान करूंगा। केवल इतना आसुरिक था, हरिनाम का उच्चारण करके इतना हृदय उनका शुद्ध हो गया, ब्रज के श्रीमती राधिका और सारी सखियों को प्रार्थना कर रहा था वो, और वो कह रहे थे कि मुझे आप स्वीकार कीजिए, आपके चरणों की सेवा प्रदान कीजिए। वो निकलने के लिए तैयार नहीं था, तो राजा ने सोचा कि इसको मृत्युदंड देते, इसने बहुत तंग किया है। कैसा मृत्युदंड, सारे जनता के समक्ष उसे लाया जाए, उसके पांव में लोहे की चेन बांधी जाए, और एक बड़ा पागल हाथी को क्या करे, उसके ऊपर से चलाए, इसकी मृत्यु का कारण बना दे, मृत्युदंड। तो इसको सारे लोगों के सामने लाया गया चांदराय को, और चांदराय तो केवल कृष्ण नाम या हरि नाम का उच्चारण कर रहा था, और जब लाया उस हाथी के सामने, हजारों लोग देख रहे थे, जो हाथी जब आया तो हाथी ने सुंड में उठा के दूर फेंक दिया, फेंका तो वो गिर गए जाकर, और फिर भी कृष्ण नाम के मुख से स्टॉप नहीं हो रहा था, और फिर हाथी उनके ऊपर चढ़ने वाला था, तो चांदराय ने क्या किया, हाथी की सुंड पकड़ ली, अभी पांव वगैरह सब बंधा हुआ था, हाथी की सुंड को हाथों से पकड़ा, जोर से खींचा, खींचते ही वो हाथी की सुंड टूटकर गिर जाती है और हाथी मर जाता है। राजा चकित होता है, अरे ये व्यक्ति अपने हाथों से हाथी को मार सकता है तो और क्या क्या नहीं कर सकता, तो उसको छोड़ के बुलाया, चांदराय इधर आओ। बल्कि जब वो हाथी उनके ऊपर चढ़ने वाला था तो उनको एक ही स्मरण आ रहा था, किसका, नरोत्तम दास ठाकुर का, और एक ही दुख हो रहा था कि हे गुरुदेव, हे श्री नरोत्तम दास ठाकुर, मैं अत्यंत दुर्भाग्यशाली हूं कि आपको मैं फिर से नहीं देख पाऊंगा, यही उनका दुख था। और तो राजा ने बुलाया कि क्या कारण, इतना शक्ति कहां से आया, वो कहते हैं जब वो हाथी में मुझे मारने वाला था, मैंने सुन पकड़कर केवल एक ही चीज का स्मरण कर रहा था, किनका, मेरे आध्यात्मिक गुरु श्री नरोत्तम दास ठाकुर का, उनके स्मरण से और उन्होंने दिया हुआ जो भगवत नाम है, इसके सामर्थ्य से मुझे पता नहीं चला कि वो हाथी भी मेरे हाथों से मारा गया। तो इस प्रकार से राजा भी चकित होता है और वो छोड़ देता है धन संपदा लेकर, और दौड़कर चांदराय सबसे पहले किसको मिलने जाते हैं, किनसे मिलते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर से। तो इस प्रकार से इतना अधिक निष्ठा आध्यात्मिक गुरु ने दिए भगवान नाम के प्रति था, ऐसे ऐसे महान डिवोटीज का और कृष्ण के प्रति अनन्य भजन की भावना थी। तो इस श्लोक में प्रभुपाद ने यही वर्णित किया है कि मैत्रेय को न देखकर कृष्ण किसको देख रहे थे, उद्धव को देख रहे थे, क्यों, क्योंकि उद्धव के अंदर शुद्ध भक्ति थी और मैत्रेय निष्ठ भक्त थे। तो प्रभुपाद तात्पर्य में गोपिकाओं का वर्णन करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा सर्वश्रेष्ठ अनन्य भक्ति का उदाहरण कोई जगत में है तो वो कौन है, गोपिकाएं हैं। तो गोपिकाएं तो हम नहीं बन सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं, गोपिकाओं के भाव को विकसित कर सकते हैं। कैसे, जो महान आचार्य गुरुदेव हैं उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, जो ब्रजवासी हैं उनके आदेशों को उनके चरण चिन्हों पर चलते हैं तो ब्रज की भावना हमारे हृदय में भी विकसित हो जाती है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के श्रील प्रभुपाद के निताई गौर प्रेमानंदे हैं।